एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने वाले हैं जो हम सब कभी न कभी सोचते हैं।
हाँ, कि हम जिन्हें हीरो या आदर्श मानते हैं, उन्हें चुनते कैसे हैं? क्या हीरा बनने का कोई फॉर्मूला होता है?
और क्या ये फॉर्मूला हमेशा एक जैसा रहता है, या फिर हर जमाने का, हर समाज का अपना अपना हीरो होता है?
बिल्कुल, आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे साइमन यारो की किताब सेंस के जरिए।
ये किताब संत या होली पर्सन के विचार की पड़ताल करती है।
और सुनने में भले ही ये एक धार्मिक विषय लगे, लेकिन असल में ये है नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये किताब एक जासूसी कहानी की तरह है।
ये अच्छा तरीका है इसे देखने का। ये हमें बताती है कि समाज अपने हीरो कैसे घड़ता है, उनकी कहानियां कैसे बनाता है, और क्यों क्यों कुछ लोग मरने के हजारों साल बाद भी हमारे लिए इतने जरूरी बने रहते हैं।
तो ये असल में हमारे समाज की ही कहानी है।
एग्जैक्टली।
तो इस पड़ताल को शुरू करने से पहले उस शख्स के बारे में जानना जरूरी है जो हमें इस सफर पर ले जा रहा है, लेखक साइमन यारो।
हाँ, और वो कोई धर्मगुरु या उपदेशक नहीं है?
नहीं, वो बर्मिंगहम विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास के प्रोफेसर हैं।
और यही बात उनके नजरिए को बिल्कुल अलग और दिलचस्प बनाती है।
कैसे?
देखिए, वो संतों को एक इतिहासकार की आंखों से देखते हैं, एक समाजशास्त्री की आंखों से।
तो उनका सवाल ये नहीं है कि चमत्कार होते हैं या नहीं?
बिल्कुल नहीं। उनका सवाल ही कि समाज को चमत्कारों की जरूरत क्यों पड़ती है, वो उनमें विश्वास क्यों करना चाहता है।
अच्छा, तो वो क्यों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं?
हाँ, उनकी खासियत है हैगियोग्राफी।
हैगियोग्राफी मतलब संतों की जीवनियों का अध्ययन।
पर वो इसे सिर्फ पढ़ते नहीं है, बल्कि एक जासूस की तरह उसकी चीरफाड़ करते हैं,
ये पता लगाने के लिए कि कहानी क्या है
और कहानी के पीछे की कहानी क्या है। वो तथ्यों, कहानियों और सामाजिक जरूरतों के बीच के रिश्ते को उजागर करते हैं।
वाह, तो किताब के सबसे बड़े आइडिया पर आते हैं।
बिल्कुल। किताब का जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली आइडिया है वो ये है कि संत कोई आसमान से उतरी हुई उपाधि नहीं है।
ये एक सामाजिक रचना है।
हाँ, संत पैदा नहीं होते, वे उन समुदायों तरह बनाए जाते हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है।
मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संत एक तरह के टूल किट है।
टूल किट, बिल्कुल सही शब्द है।
हर समाज इस टूल किट का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के हिसाब से करता है।
कभी किसी को प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए,
कभी मुसीबतों में रक्षा के लिए,
और कभी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए।
और यही किताब का पूरा सफर है। ये हमें दिखाती है कि कैसे दूसरी सदी के रोम में संत का मतलब कुछ और था,
और फिर मध्ययुग में जब चर्च सबसे बड़ी ताकत बन गया, तब मतलब बिल्कुल बदल गया,
और आज तो खैर बात ही अलग है।
तो चलिए इस टूल किट का पहला और सबसे पुराना टूल देखते हैं, वो क्या था।
किताब हमें बताती है कि शुरुआती संत थे शहीद, मतलब मार्टियर्स,
रोमन साम्राज्य के दौर में।
हाँ, जब अपने ईसाई विश्वास को मानना एक जुर्म था, तो जो लोग इसके लिए अपनी जान दे देते थे वो पहले हीरो बने।
और यही पर किताब का वो आइडिया सामने आता है कि संत समाज का आईना होते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। उस वक्त का रोमन समाज बहादुरी को, बलिदान को सबसे बड़ा गुण मानता था।
तो सेंट परपेचुआ जैसी महिलाएं जिन्होंने बहादुरी से मौत को गले लगाया,
वो उस समाज की सबसे बड़ी हीरो बन गई।
उनका बलिदान ही उनकी पवित्रता का सबसे बड़ा सबूत था।
लेकिन फिर जैसा होता है, कहानी में एक मोड़ आता है। जब ईसाई धर्म कानूनी हो गया, तो शहादत का मौका ही खत्म हो गया, तो अब पवित्रता का नया मॉडल क्या होगा?
तब सामने आए तपस्वी, एसेटिक्स।
ये वो लोग थे जो मतलब दुनिया छोड़कर चले गए।
हाँ, भीड़भाड़ और मोहमाया छोड़कर रेगिस्तान में चले गए, जैसे सेंट एंटनी।
तो अब लड़ाई बाहरी दुश्मनों से नहीं थी?
नहीं, अब लड़ाई अपने अंदर के राक्षसों से थी, लालच, घमंड, वासना। इसे सफेद शहादत कहा गया।
सफेद शहादत, व्हाइट मार्टिरडम, ये शब्द थोड़ा अजीब है। सफेद क्यों?
सफेद क्योंकि इसमें खून नहीं बहता था।
अच्छा।
ये बिना तलवार के लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। रेगिस्तान ही उनका युद्ध का मैदान था, और उनकी अपनी इच्छाएं ही उनकी दुश्मन।
तो समाज में एक बड़ा बदलाव था। अब हीरो वो नहीं था जो सबके सामने मरता था,
बल्कि वो था जो अकेले में खुद को जीतता था। आईने में तस्वीर बदल रही थी,
और ये तस्वीर बदलती ही रही।
बिल्कुल। जैसे जैसे चर्च एक बड़ी और ताकतवर संस्था बना, संत का आदर्श भी बदल गया।
अब हीरो थे बिशप, भिक्षु और मिशनरी।
संत मार्टिन ऑफ टूर्स जैसे लोग जो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे,
बल्कि एक तरह के नागरिक प्रशासक भी थे, समुदाय की देखभाल करने वाले।
या फिर सेंट पैट्रिक जैसे मिशनरी जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर नए इलाकों में ईसाई धर्म फैलाया।
तो मतलब पवित्रता का मतलब था संस्था बनाना, उसका विस्तार करना।
हाँ, संत अब एक आध्यात्मिक सीईओ की तरह हो गए थे।
ये तो हुई टॉप डाउन कहानी जो चर्च हमें बता रहा था, लेकिन एक आम आदमी के लिए,
हाँ, एक किसान या कारीगर के लिए,
उसके लिए संत का क्या मतलब था? मुझे लगता है किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है।
हाँ, और यहाँ दो चीजें सामने आती हैं, अवशेष और तीर्थ यात्रा,
रेलिक्स और पिलग्रिमेज।
अवशेष यानी संतों की हड्डियां, उनके कपड़े या कोई भी चीज जो उन्होंने इस्तेमाल की हो।
आज के नजरिए से ये सोचना थोड़ा अजीब लगता है।
बिल्कुल, कि किसी की हड्डियों में कोई शक्ति कैसे हो सकती है?
क्या लेखक बताते हैं कि उस समय के लोग इसे तार्किक रूप से कैसे देखते थे?
वो बताते हैं कि हमें उनकी मानसिकता से सोचना होगा। उनके लिए दिव्यता कोई हवा हवाई विचार नहीं थी।
अच्छा।
उसे छुआ जा सकता था, महसूस किया जा सकता था। अवशेष संत की शक्ति के भौतिक सबूत थे।
तो जिस चर्च के पास किसी बड़े संत के अवशेष होते हैं,
वो एक आध्यात्मिक पावर स्टेशन बन जाता था, जहां स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती थी।
ये कमाल का नजरिया है। मतलब जैसे आज हम किसी पसंदीदा क्रिकेटर के बल्ले को एक खास चीज मानते हैं,
उनके लिए अवशेषों का महत्व उससे कहीं ज्यादा था।
और इन्हीं पावर स्टेशनों तक पहुंचने के लिए लोग हजारों मील की तीर्थ यात्रा करते थे।
और वो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी,
नहीं,
वो जमाने के सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक गतिविधि थी। उसने पूरे यूरोप को सड़कों, बाजारों और सरायों के एक नेटवर्क से जोड़ दिया।
आज की टूरिज्म इंडस्ट्री जैसा कुछ है ना?
बस उसकी प्रेरणा आध्यात्मिक थी।
एक मिनट, ये तो ठीक है कि लोग किसी को संत मान रहे हैं, उनकी कब्रों पर जा रहे हैं, पर इस पर कोई आधिकारिक मोहर भी तो लगाता होगा।
अच्छा सवाल है।
या ये बस पब्लिक डिमांड पर चलता था?
शुरुआत में तो ये बिल्कुल पब्लिक डिमांड पर ही चलता था।
सच में?
हाँ, अगर किसी पवित्र व्यक्ति की कब्र पर चमत्कार होने की खबरें फैलती तो स्थानीय लोग उन्हें संत मान लेते थे। ये एक बॉटम अप प्रक्रिया थी।
लेकिन फिर ये बदला।
हाँ, 12वीं सदी के बाद रोम में बैठे पोप को लगा कि इस प्रक्रिया पर उनका नियंत्रण होना चाहिए।
मतलब अब चीजें बदलने वाली थी।
बिल्कुल, यहीं से कैनोनाइजेशन की कानूनी और कह सकते हैं नौकरशाही प्रक्रिया शुरू हुई।
आध्यात्मिक क्वालिटी कंट्रोल जैसा कुछ।
हाँ बिल्कुल सही कहा। पहले कोई भी स्थानीय हीरो संत बन सकता था, लेकिन अब वेटिकन ने कहा, नहीं, पहले हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे।
एक तरह का आध्यात्मिक ऑडिट।
हाँ, गवाहों से पूछताछ होगी, सबूत देखे जाएंगे, फिर हम सर्टिफिकेट देंगे।
मतलब संत बनने के लिए भी कितनी कागजी कार्रवाई और ब्यूरोक्रेसी थी।
स्वर्ग में जाने के लिए भी आपको पहले धरती पर फाइलें क्लियर करवानी पड़ती थी।
कुछ ऐसा ही लगता है।
ये चर्च द्वारा अपनी शक्ति को केंद्रित करने का एक शानदार तरीका था।
और किताब कहानी को आधुनिक युग तक ले आती है। जब विज्ञान और तर्क का जोर बढ़ा तो क्या संतों का विचार खत्म हो गया?
खत्म नहीं हुआ।
नहीं,
बल्कि उसने खुद को नए जमाने के हिसाब से ढाल लिया,
अडेप्ट कर लिया।
हाँ, नए तरह के संत सामने आए, जैसे सेंट थेरेस ऑफ लिजियक्स।
उन्होंने क्या अलग किया?
उन्होंने कहा कि पवित्र होने के लिए बड़े बड़े चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, आप रोजमर्रा के छोटे छोटे काम प्यार और ईमानदारी से करके भी पवित्रता पा सकते हैं। इसे उन्होंने छोटा रास्ता कहा।
ये तो आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात रही होगी।
बिल्कुल, और फिर 20वीं सदी में ऑस्कर रोमेरो जैसे लोग, जिनकी सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाने पर हत्या कर दी गई।
तो यहाँ संत की भूमिका फिर बदल गई।
हाँ, अब वो एक सामाजिक और राजनीतिक नायक बन गए।
और किताब का अंत इस विचार के साथ होता है कि ये प्रक्रिया आज भी इस डिजिटल युग में भी जारी है।
बिल्कुल, आज हमारे पास वायरल संत हैं।
वायरल संत?
हाँ, जब कोई वैज्ञानिक एक बड़ी खोज करता है या कोई पर्यावरण कार्य करता है अमेज़न के जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, तो मीडिया उनकी कहानी कैसे सुनाता है?
एक आदर्श की तरह, उनके संघर्ष को, उनकी जीत को एक महाकाव्य की तरह पेश किया जाता है।
एग्जैक्टली, ये एक तरह की मॉडर्न हैग्योग्राफी ही तो है।
और उनके सोशल मीडिया पेज आधुनिक तीर्थ बन जाते हैं।
बिल्कुल, जहां लोग प्रेरणा लेने जाते हैं। रूप बदल गया है, पर नायकों और आदर्शों की हमारी जरूरत वैसी ही बनी हुई है।
तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो कुछ बड़े पैटर्न्स या कहूं कि मुख्य संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से?
मुझे लगता है सबसे पहली और बड़ी बात तो वही है, संत समाज का आईना होते हैं। एक योद्धा समाज योद्धा संतों को पूजेगा, एक व्यापारिक समाज उन संतों को मानेगा जो व्यापार की रक्षा करते हैं,
और एक न्याय के लिए लड़ने वाला समाज सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपना संत मानेगा।
सही, आप किसी समाज के संतों को देखिए और आप उस समाज के मूल्यों को समझ जाएंगे।
हाँ, और इसमें एक और परत में जोड़ना चाहूंगी कि आधिकारिक धर्म और लोकप्रिय भक्ति के बीच हमेशा एक खींचतान रही है।
बहुत जरूरी पॉइंट है ये।
एक तरफ संस्था का नियंत्रण था जो तय करना चाहता था कि हीरो कौन होगा,
और दूसरी तरफ आम लोगों की अपनी जरूरतें और अपने विश्वास थे।
जो अक्सर अपने स्थानीय हीरो खुद चुन लेते थे। ये लड़ाई आज भी दिखती है
हर जगह, कला हो या राजनीति।
बिल्कुल।
तीसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि पवित्रता कभी भी राजनीति से अलग नहीं रही। राजाओं ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए संतों का इस्तेमाल किया, समुदायों ने अपनी पहचान बनाने के लिए संरक्षक संत चुने,
और राष्ट्रों ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संत बनाए।
संत हमेशा सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने का हिस्सा थे, कोई उससे बाहर की चीज नहीं।
और चौथा, जो आज हमें समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, वो है कि विश्वास एक भौतिक चीज थी।
हाँ, वो दिव्यता वाला पॉइंट।
मध्य युग में दिव्यता कोई अमूर्त विचार नहीं था,
उसे अवशेषों में छुआ जा सकता था,
तीर्थ स्थलों पर महसूस किया जा सकता था,
अध्यात्मिकता का एक फिजिकल एड्रेस था।
वाह, और इसी वजह से वो आम लोगों के लिए ज्यादा सुलभ और असली थी।
इस किताब में कुछ विचार ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद भी मतलब दिमाग में घूमते रहते हैं।
जैसे कि वो पहली बात जो इस पूरी चर्चा का सार है।
कौन सी?
संत पैदा नहीं होते, वे उन समुदायों द्वारा बनाए जाते हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है।
हाँ, ये तो सब कुछ कह देती है।
ये एक लाइन ही पूरा नजरिया बदल देती है ना।
बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि हीरो कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो उस व्यक्ति और समाज की जरूरतों के मेल से बनता है। दूसरा यादगार विचार अवशेषों के बारे में है। एक मध्ययुगीन संत की शक्ति अमूर्त नहीं थी, यह उनके भौतिक अवशेषों के माध्यम से मूर्त, स्थानीय और सुलभ बनाई गई थी।
ये हमें याद दिलाता है कि अलग अलग समय में लोगों के सोचने का तरीका कितना अलग होता है।
हाँ, हमारे लिए जो अंधविश्वास हो सकता है उनके लिए वो एक ठोस हकीकत थी।
और एक अंतिम विचार जो सीधे आज के समय पर चोट करता है,
वो कौन सा?
आधुनिक सेक्युलर समाज ने संतों को खत्म नहीं किया है, उसने बस उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बदल दी है।
आहा, ये बहुत शक्तिशाली अवलोकन है।
ये हमें ये देखने के लिए मजबूर करता है कि हमारे समाज में हीरो और नैतिक आदर्श के विचार कैसे विकसित हुए हैं, भले ही वे अब किसी धार्मिक चोले में न हो।
तो सवाल ये है कि इस सारी ऐतिहासिक बातचीत का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है?
बहुत कुछ है।
पहली बात तो ये कि ये हमें हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों को समझने में मदद करता है।
दुनिया भर में शहरों के नाम, सैन फ्रांसिस्को, सेंट पीटर्सबर्ग,
कला, त्योहार, ये सब कहीं ना कहीं इन कहानियों से जुड़े हैं।
इससे भी बढ़कर ये हमें आज के समाज को पढ़ने का एक चश्मा देता है। जिस तरह हम आज अपने नायकों और मशहूर हस्तियों को बनाते हैं, चाहे वे खिलाड़ी हों, अभिनेता हों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर,
वो प्रक्रिया काफी हद तक वैसी ही है जैसी संतों को बनाने की थी।
हाँ, हम उनके संघर्ष की कहानियां गढ़ते हैं, उनकी एक खास छवि बनाते हैं
और उनके सोशल मीडिया पेज पर जाकर प्रेरणा और मार्गदर्शन खोजते हैं।
ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा समाज आज किसे अपना संत बना रहा है,
और ये हमारे सामूहिक मूल्यों के बारे में क्या कहता है।
क्या हम साहस, करुणा और निस्वार्थता को महत्व दे रहे हैं,
या फिर शोहरत, पैसा और ताकत को?
ये किताब हमें अपने आधुनिक नायकों पर एक आलोचनात्मक नजर डालने के लिए एक फ्रेमवर्क देती है।
मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि हीरो या आदर्श की अवधारणा कितनी लचीली है,
अडेप्टेबल। हाँ, एक रोमन शहीद से लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता तक रूप बदलता रहता है, लेकिन एक रोल मॉडल की, एक आदर्श की मानवीय जरूरत
वो हमेशा बनी रहती है।
बिल्कुल।
और मुझे सबसे आकर्षक हिस्सा संस्थागत मंजूरी और लोकप्रिय प्रेम के बीच का तनाव लगा।
हाँ, वो टॉप डाउन बनाम बॉटम अप वाली बात।
ये सिर्फ संतों पर ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में लागू होता है। अक्सर जिन्हें संस्थाएं मान्यता देती हैं और जिन्हें लोग वास्तव में प्यार करते हैं, उनमें एक फासला होता है।
सही कहा।
जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, आज हमारे समाज के अनकैनोनाइज्ड यानी अघोषित संत कौन हैं?
वो लोग जिन्हें शायद कोई बड़ा अवार्ड ना मिला हो, लेकिन जो अपने कामों से चुपचाप समाज को प्रेरणा दे रहे हैं।
और वे हमारे बारे में क्या बताते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
यह ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है कृति कुमार फाउंडेशन द्वारा।